आज है 1 सितंबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। नरेंद्र मोदी ने की भागलपुर में चौथी परिवर्तन रैली। क्यों नरम पड़ गए हैं मोदी के तेवर?
थोड़ा अलग दिखाई दिया पहले के मुकाबले, और आज वो सफाई देने के मोड में ज्यादा दिखाई दिए। जैसा कि मुजफ्फरपुर, गया और सहरसा में वो आक्रामक दिख रहे थे।
मणिपुर में तनाव जारी। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के 50 साल हुए पूरे।
मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं दर्द में हूँ या मुझे तकलीफ है या मैं घायल हूँ। मेरी आंखों में आंसू आज इसलिए है कि मैं खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सलूट नहीं कर सकता।
आज से शुरू हो रही है विशेष श्रृंखला, लेकिन थोड़ी देर में सुनेंगे, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल मोहम्मद अली से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो उनसे हिसाब मांग रहे हैं उन्हें पहले खुद पिछले 25 सालों का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। मोदी का इशारा बिहार की सत्ता में मौजूद नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तरफ था, जिन्होंने 2 दिनों पहले की रैली में मोदी की 1 करोड़ नौकरियाँ पैदा करने जैसे वादों पर प्रश्न खड़े किए थे। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि उन्होंने जिस 1,65,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है वो उस करीब 4,50,000 करोड़ के अलावा है जो बिहार को केंद्र सरकार से मिलने हैं। थाईलैंड ने 2 सप्ताह पहले बैंकॉक में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले के केस में एक दूसरे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति की नागरिकता नहीं बताई गई है, लेकिन उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वो कंबोडिया जाने की कोशिश कर रहा था, थाईलैंड की फौज के प्रवक्ता ने कहा।
Personnel from Burapa Task Force have found and apprehended.
विशेष टास्क फोर्स ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया है जो सीसीटीवी में पीला शर्ट पहने हुए देखा जा सकता है और जिसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। इस संदिग्ध को कंबोडिया की सीमा के पास सा क्यू सूबे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस उससे अधिक पूछताछ कर रही है, थाईलैंड की फौज की प्रवक्ता के शब्द। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी दमिश्क के बाहर दूसरे विद्रोही समूहों पर हमले कर रहे हैं। इस हमले के बाद आईएस दमिश्क के सबसे पास के इलाके तक पहुंच गया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या लड़ाई सिर्फ दूसरे विद्रोही गुट के इलाके पर कब्जा करने तक सीमित रहेगी या उन क्षेत्रों में भी घुसेगी जो सरकार के कब्जे में है। कुवैत ने 24 लोगों पर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने का केस दर्ज किया है। सरकारी वकील ने कहा है कि ये लोग हिजबुल्ला और ईरान के साथ मिलकर कुवैत के विरुद्ध कदम उठा रहे थे। इन लोग पर विस्फोटक और हथियार स्मगल करने का आरोप है। कुवैत और खाड़ी के दूसरे मुल्क ईरान पर अपनी सीमाओं में हमले की योजना बनाने का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। पोप फ्रांसिस ने पादरियों से कहा है कि वो आने वाले सालों में उन सभी औरतों के माफ़ी की दुआ करें जिन्होंने गर्भपात करवाया था। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की सोच में बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है जो गर्भपात के बिल्कुल खिलाफ है। पवित्र वर्ष दिसंबर में शुरू हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। अगर समुदाय का कोई व्यक्ति यह करता हुआ गर्भपात करता हुआ दिखता है तो उसे समाज से निकाल दिया जाता है। यूरोप और एशिया में शेयर बाजारों में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। ये खबर आई है कि चीन में फैक्ट्री प्रोडक्शन सुस्त पड़ा है। जापान का निकेई शेयर बाजार 3.8% गिरा। बीबीसी के आर्थिक मामलों के संवाददाता का कहना है कि यह गिरावट इस बात को दर्शाती है कि चीन की अर्थव्यवस्था किस तरह विश्व स्तर पर हलचल मचा सकती है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर में परिवर्तन रैली की। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मोदी 4 रैलियां और जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर बना महागठबंधन 1 रैली कर चुका है। आज की अपनी रैली में उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया।
25 साल में क्या काम किया, बिहार का क्या हाल किया, विकास क्यों नहीं आया, रास्ते क्यों नहीं बने, बिजली क्यों नहीं मिली, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मेरे से जवाब लोकसभा के चुनाव में मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मुझे लोकसभा के चुनाव में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं जनता जनार्दन का सेवक हूँ, मेरा दायित्व बनता है जब लोकसभा का चुनाव आए मुझे आपको हिसाब देना चाहिए और मेरे काम के आधार पर आपसे वोट मांगने चाहिए।
ये थे नरेंद्र मोदी। अपनी तीन रैलियों में आक्रामक, राज्य में सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाने और जंगल राज का मुद्दा उठाने वाले मोदी की भाषा आज कुछ बदली नजर आई। रांची में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी कहते हैं,
मुझे आज प्रधानमंत्री का भाषण थोड़ा अलग दिखाई दिया पहले के मुकाबले, और आज वो सफाई देने के मोड में ज्यादा दिखाई दिए। जैसा कि मुजफ्फरपुर, गया और सहरसा में वो आक्रामक दिख रहे थे कि डीएनए का सवाल उठाया, भुजंग प्रसाद चंदन कुमार कहा, जेडीयू को परिभाषित किया कि जनता का दमन उत्पीड़न और रोजाना जंगल राज का कहर, इस तरह की जो चीजें लगातार वो कह रहे थे, आज की रैली में वो सफाई दे रहे थे कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, पहले की ये सफाई दे रहे थे कि बिहार के को लेकर के वो कितना चिंतित हैं और बिहार की कोई बात होती है तो किस तरह से वो चिंतित हो उठते हैं और एक्शन में आ जाते हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें बताई।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने की माने तो आज नरेंद्र मोदी बचाव की मुद्रा में दिखे।
डिफेंसिव तो उनको होना ही चाहिए था, क्योंकि अगर वो नीतीश जी के लगाए आरोपों का जवाब नहीं देते, कि नीतीश जी की भी अपनी एक हैसियत है, बिहार में वो मुख्यमंत्री हैं, उनको 10 साल हो गए, उनका ज्यादातर समय तो भाजपा के साथ शासन में गुजरा है, लेकिन वो क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। थोड़ी सी अनपेक्षित बात है कि प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के लगाए आरोपों का सार्वजनिक रूप से सभा में जवाब देता रहे, लेकिन इससे पता लगता है कि मोदी विकास के एजेंडे को पकड़े रखने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते और कोई मौका नहीं देना चाहते, वो नीतीश जी को या लालू जी को या कांग्रेस के नेताओं को। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश एनडीए के उन नेताओं के लिए भी है जो इलेक्शन को बहुत कटुतापूर्ण या बहुत विषाक्त जहरीला बनाने में रोल प्ले कर सकते हैं, एनडीए के घटक दलों के नेता भी और भाजपा के भी कुछ नेता भी, तो एक मैसेज उनके लिए भी जाता है, लोग इसको पसंद करते हैं, कम से कम यूथ ये चाहता है कि आज के जमाने में वो उस तरह की भाषण नहीं चाहता।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। उधर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी मानते हैं कि हाल ही में महागठबंधन की रैली ने मोदी के हौसलों को कम किया है और यही उनकी शैली में नरमी का कारण बना।
उनकी वेव चल रही है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि दोनों बराबर पे माने जा रहे थे और अपर हैंड बीजेपी का माना जाता था कि 51 बीजेपी है तो 49 ये लोग हैं, लेकिन इस महागठबंधन की रैली ने वो सिनेरियो थोड़ा बदल दिया है। और इसके अलावा जिस तरह की सधी भाषा में सोनिया गांधी ने उस महारैली में अपनी बातें कही, नीतीश कुमार ने आंकड़ों के साथ चीजें रखी, और जंगल राज का जो सवाल उठाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने बताया कि पर 1 लाख आबादी पर कहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें जो भाजपा शासित राज्य थे उनमें अपराध ज्यादा है। तो उनका कहना था कि जंगल राज, अगर यही पैमाना है जंगल राज का, तो वहां जंगल राज है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पे मजबूर करने वाली हैं, और किया है जो आज की रैली से दिखाई दिया।
तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी। मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कल स्थानीय सांसद, 2 मंत्री और 5 विधायकों के घर जलाने के बाद समूचे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी रहा। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायल हुए 13 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने और जानकारी के लिए बात की मणिपुर में मौजूद स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से।
मणिपुर में कल हुई हिंसा के बाद आज स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। कल कुछ अज्ञात लोगों ने चूड़ाचंद्रपुर में 2 मंत्री, 1 सांसद और 5 विधायकों का घर जला दिया था। इनकी नाराजगी थी, जो कल विधानसभा में 3 विधेयक पारित हुए थे, उसमें एक विधेयक था जहां ट्राइबल इलाके में जमीन, अब से ट्राइबल इलाके में जमीन दूसरे लोग भी खरीद सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस बात को आज इनकार किया है। सरकार का कहना है कि चूड़ाचंद्रपुर पूरे जिले में नहीं, दरअसल चूड़ाचंद्रपुर का जो ये इलाका है, यहाँ कुकी ट्राइबल आदिवासी लोग रहते हैं, और कुकी लोगों का ही ये पूरी घटना में, कुकी लोगों की ही नाराजगी है। हालांकि जिन लोगों ने घर जलाया है, अभी ये पुलिस कंफर्म नहीं कर पाई कि कौन है, लेकिन कल जब विधेयक ये तीन विधेयक जब पारित होने की बात थी तो उस समय पहाड़ी जिले चूड़ाचंद्रपुर सहित पहाड़ी जिले मणिपुर के कल तीन संगठनों ने कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सहित तीन संगठनों ने पहाड़ी जिलों में बंद दिया था कि विरोध करते हुए और विधानसभा में ये बिना किसी विरोध के ये तीनों विधेयक पारित हो गए और शाम को ये घटना हो गई। इस घटना में तीन लोग मारे गए हैं और 13 लोगों का इलाज चल रहा है। अब सरकार का अब कहना है कि भाई ये जो विधेयक है ये पूरे पहाड़ी जिले के लिए नहीं है, इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं केवल कुछ इलाकों में ही ये मान्य होगा, बाकी जिलों में नहीं होगा। हालांकि जो विरोध कर रहे हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई जो ट्राइबल जो हमारा जो बेल्ट है जो हमारा जो आदिवासी इलाका है यहाँ हम किसी को भी जमीन नहीं लेने देंगे, यहाँ किसी को भी हम।
तो सरकार ने एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए हैं वहाँ पर?
हाँ, चूंकि कई इलाकों से पुलिस से मेरी बात हुई थी तो पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई इलाकों में आगजनी और इस तरह की हिंसा फैलाने की खबरें आ रही थी पुलिस के पास, तो एहतियात के तौर पर वहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया था कल से ही। आज भी कर्फ्यू जारी रहा, आज शाम को भी कर्फ्यू अभी अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू जारी है और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उतारा गया है। अति संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है।
तो मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति, इलाके में कर्फ्यू अभी जारी है और तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी जानकारी दे रहे थे मणिपुर से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा। इनको पहले दो गोलियां लगी, फिर दो गोलियां और लगी और वो अटैक आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा यूएसए
कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दूसरे युद्ध को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। आज से हम इस युद्ध पर एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसे आप दिन भर और विश्व भारती में अगले 22 दिनों तक लगातार सुनेंगे। पहली श्रृंखला में रेहान फजल बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और किस तरह इस युद्ध का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाया था।
ये आवाज है भारतीय उपमहाद्वीप की महान गायिका नूरजहां की, जो उन्होंने 1965 के युद्ध में भाग ले रहे पाकिस्तानी सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए दी थी। हालांकि इस लड़ाई को आज 50 साल हो रहे हैं लेकिन यहां के जनमानस की याददाश्त में ये युद्ध धूमिल सा हो चला है, उसकी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी शायद 1962 के भारत चीन युद्ध या फिर 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध की। शायद इसका कारण यह भी रहा हो कि इसमें नॉकआउट पंच न तो भारत मार पाया और न ही पाकिस्तान। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि इसमें हार जीत का फैसला अंकों के आधार पर हुआ। आपको ले चलते हैं ठीक 50 साल पहले, दिन सितंबर 1, 1965, समय दोपहर 4 बजे, स्थान साउथ ब्लॉक का कमरा नंबर 108, तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण के सचिव रहे और बाद में भारत के गृह सचिव बने राम प्रधान याद करते हैं।
चव्हाण साहब लंच के बाद दोपहर को ऑफिस गए, वो जाने के बाद काम कर रहे थे, इतने में मूचू चौधरी और अर्जुन सिंह आए और वो आने से एक 15-20 मिनट पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और कहने लगे कि युद्ध शुरू हुआ है, अभी रिपोर्ट आए हैं। इंटेलिजेंस के आदमी भी आए, मलिक, कहने लगे कि हमारी इंफॉर्मेशन बराबर नहीं थी सुबह जो हमने कहा, क्योंकि इन द चाम सेक्टर पाकिस्तानी आर्मी इज मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर टू क्रॉस ओवर इनटू कश्मीर। शाम होने वाली थी, उनको मालूम था एक दफ़ा शाम हो जाए तो ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने में मुचू चौधरी जो आए थे दिल्ली में वो सीधे एयर हेडक्वार्टर्स गए और उन्होंने अर्जुन सिंह को लेके चव्हाण साहब के ऑफिस में आए और उन्होंने चव्हाण साहब को कहा कि देखिए हमारी असेसमेंट गलत थी। युद्ध शुरू हुआ है और अपने को रिस्पॉन्स करना ही चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो रात को जो अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो हमारे फोर्सेस तो तैयार नहीं है, आर्म फोर्सेस वो काफ़ी अंदर हैं जम्मू में, उनको मूवमेंट करके बॉर्डर पर लाना डिफिकल्ट है रात को। अरजीत सिंह ने कहा एयर ऑपरेशन, तो चौहान साहब ने कहा आपको कॉन्फिडेंस है एयर ऑपरेशन? कहने लगा एयर फोर्स इज मेंट फॉर दैट, इफ़ यू अलाउ मी हम करेंगे। कितना दे रहे हैं? तो कहने लगा साहब 5 मिनट में मुझे हुक्म चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके ऑर्डर्स के बाद एयर हेडक्वार्टर्स में जाके सिग्नल भेजूंगा और सिग्नल भेजने के बाद ही हमारे प्लेन्स निकलेंगे वहाँ से। तो चौहान साहब अपने कुर्सी से उठे और एक कोने में जाके बैठे, पहले ऐसे ज़रा विचार किया, उन्होंने जाके लाल बहादुर शास्त्री के बोलने का प्रयत्न किया। शास्त्री जी नहीं थे वहाँ, शास्त्री जी पार्लियामेंट में थे उस वक्त, आए कुर्सी पर बैठे और कहा आप करिए, आई ऑर्डर द इंडियन एयरफोर्स टू अटैक इन द चांप सेक्टर।
रक्षा सचिव पीवीआर राव ने चव्हाण के मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। समय था 4:45। 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के वैम्पायर विमानों ने छम पर बमबारी करने के लिए टेक ऑफ किया। सैनिक पंडितों का मानना है कि कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के कई कारण थे। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी एन शर्मा उस समय भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मुच्छू चौधरी के मिलिट्री असिस्टेंट थे।
हिंदुस्तानी फौज में मोराल ऊंचा नहीं था 65 में भी, 62 के कारण। एक तो हार हो गई थी वहाँ, दूसरा बड़े तूतू मैं चल रही थी। अगली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया 1964 में। कामनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री को इस कारण चुना कि वो भगवान का नाम लेने वाला आदमी है, बिल्कुल अग्रेसिव आदमी नहीं है, सबके साथ अच्छा सलूक रखता है, इस कारण वो कंसेंसस कैंडिडेट था, कोई उसकी ज़्यादा परवाह तो करते नहीं थे। तो वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप में वीकनेस गिनी गई है पाकिस्तान की तौर से, क्योंकि हिंदुस्तान का फैसला हुआ कि नॉर्दर्न बॉर्डर में अभी फौजें खड़ी करनी पड़ेंगी, हमारे पास कोई सैनिक नहीं थे, कोई ट्रूप्स नहीं थे, तादाद नहीं थी। तो पंजाब के सारे डिवीजन से एक एक ब्रिगेड निकाल के नॉर्दर्न बॉर्डर में भेजे गए माउंटेन डिवीजन बनाने के लिए। 10 माउंटेन डिव खड़ा करने के हुक्म मिले, वो 10 डिवीजन के लिए न्यूक्लियस जो है एक एक ब्रिगेड प्लेन्स का, 3 डिवीजन जो पंजाब के थे उनसे लेकर नॉर्दर्न बॉर्डर में भेजे गए। इस कारण पंजाब की फौजों में बड़ी वीकनेस थी। अभी अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान के पास अमेरिकन एड आ रहा था, उनके अभी देखे जो फौजियों की तरफ से जो हथियार वगैरह सब कुछ आ रहे थे मोरलेस फ्री अमेरिका से आ रहे थे, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। दूसरी बात, उनके पास टैंक M-47 और लेटेस्ट M-48 पैटर्न अमेरिकन ने भेजा शुरू कर दिया, हमारे पास पुराने जमाने के वर्ल्ड वॉर टू के शर्मन टैंक थे।
मैंने लंदन फोन कर फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद पुस्तक के लेखक फारूक बाजवा से सवाल किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करने का फैसला क्यों किया, जबकि ये जग जाहिर था कि भारत की सेना पाकिस्तान से कहीं बड़ी थी।
ये पहली जंग थी जो पाकिस्तान समझता था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि 10-15 साल पहले से अमेरिका पाकिस्तान को काफी मदद कर रहा था, पैसों से भी और फौज की भी मदद कर रहा था। पाकिस्तान को काफी असला मिल गया था 1950 के बाद, तो 1965 तक जब ये जंग शुरू हुई थी पाकिस्तान की फौज समझती थी कि हम भारत को एक जंग में हरा सकते हैं। उसके पहले ये काफ़ी एक जज्बा आ गया था पाकिस्तान में कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, अभी हुई, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो जाहिर है वो पाकिस्तान कामयाब ना हो सका, कश्मीर में एक फुट भी नहीं मिला उनको, एक इंच नहीं मिला। तो जब जंग खत्म हुई तो पाकिस्तान भारत का एग्जैक्टली वही पोजीशन थी जो जंग से पहले थी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान नाकामयाब रहा इस जंग में। उसके बाद अभी 50 साल बाद पाकिस्तान में अभी तक वो लोग याद करते हैं जंग को, समझते हैं कि हमने भारत को होल्ड किया, लेकिन एक्चुअली जो पोजीशन थी, असली पोजीशन ये है कि पाकिस्तान नाकामयाब रहे उस जंग में।
बहरहाल छम में पाकिस्तान को शुरुआती सफलता मिलने के बाद भारतीय नेतृत्व ने फैसला किया कि वो कश्मीर पर दबाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट की ओर कूच करेंगे। ये भारत का ट्रंप कार्ड था। फूंक फूंक कर कदम रखने वाले जनरल अय्यूब खां विदेश मंत्री भुट्टो के आकलन पर यकीन कर बैठे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। भारत ने जब 6 सितंबर को लाहौर फ्रंट खोला तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित खुद फील्ड मार्शल अय्यूब खां थे। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा।
मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्ला फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अगले 22 दिनों तक चले युद्ध में दोनों देशों के निचले स्तर के अफसरों और सैनिकों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कमान के स्तर पर दोनों तरफ से कई बड़ी गलतियां हुई। भर्की के मोर्चे पर पाकिस्तान के मेजर इम्तियाज भट्टी ने 5 दिनों तक भारतीय सैनिकों की जबरदस्त गोलाबारी का मुकाबला किया। आखिर में वो एक भारतीय टैंक के गोले के शिकार हुए। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशाने हैदर दिया गया। फिलोरा के मोर्चे पर मेजर भूपेंद्र सिंह के टैंक पर पाकिस्तानियों ने कोबरा मिसाइल से हमला किया। उससे इतनी गर्मी पैदा हुई कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह जल गए और उनका कड़ा गलकर उनकी खाल में घुस गया। उनको इलाज के लिए दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन्हें देखने सैनिक अस्पताल गए। शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री याद करते हैं।
मैं उनके साथ गया तो विभिन्न वार्डों में से होता हुआ एक वार्ड में मैं पहुंचा उन शास्त्री जी के साथ। तो वहां पे एक मेजर भूपिंदर सिंह नाम के एक अफसर वहां पे घायल थे। उनका शरीर एक कपड़े से ढका गया था क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। तो जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेजर भूपिंदर सिंह की आंखों में आंसू। तो उन्होंने कहा कि मेजर साहब, आपकी आंखों में आंसू तो शोभा नहीं दे रहे हैं, आप तो बहुत बड़े अफसर हैं और अभी आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। तो उस बहादुर मेजर ने ये कहा कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मैं दर्द में हूँ या मुझे तकलीफ़ है या मैं घायल हूँ। मेरे आंखों में आंसू आज इसलिए है कि मैं खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को सलूट नहीं कर सकता।
लड़ाई के दौरान शास्त्री के निवास स्थान 10 जनपद पर उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक बंकर बनाया गया था।
उस बंकर में क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो अब लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय हो गया है, तो वो बंकर को बंद नहीं किया बल्कि वहाँ पे वाटर टैंक बन गया है। जब वो सायरन बजता था हम लोग को खबर आ जाती थी तो हम लोग प्रधानमंत्री शास्त्री जी के साथ ट्रेंचेस में जाके छुप जाते थे क्योंकि शास्त्री जी को फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बहुत जोर देते थे कि भाई आपको अब निकलना चाहिए। 22 दिन हम लोग मतलब सो नहीं पाते थे। बीच में फिर जब थोड़ी और लड़ाई तेज हुई तो शायद ये इस तरह की खबर आई कि उन्होंने प्रधानमंत्री निवास को ट्रैक कर लिया है, आसपास हो सकता है वो बॉम्बिंग करें या बम्बार्डमेंट करें। तो उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि भाई हमारा जहाँ मैं निवास करता हूँ ये ज्यादा मजबूत है, इस पे अगर बम गिरेगा तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन आसपास गिरेगा तो ये दीवारें उसको रोक लेंगी, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वो कमजोर है। तो फिर हम लोग 2-3-4 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन शिफ्ट हो गए थे पूरा परिवार और हम लोग वहीं जाके रात में रहा करते थे। लेकिन बाकी हम लोग दिनचर्या वही थी, स्कूल जाते थे, पढ़ाई होती थी, होमवर्क होता था, उसमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी आफत हो गई है।
उधर फील्ड मार्शल अयूब खान जब तक अपने शयन कक्ष में मौजूद रहते उनके बेडरूम की हरी लाइट जलती रहती। इस बीच उन्हें गुप्त रूप से मंत्रणा के लिए चीन जाना पड़ा। अयूब खां के छोटे बेटे और उनके एडीसी रहे गौहर अयूब खां याद करते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा था, कराची से नया बन रहा था इस्लामाबाद, तो प्रेसिडेंट्स हाउस आर्मी हाउस में उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था। सादा सा घर था नॉर्दर्न कमांड का। तो जब चीन जाना था 19 सितंबर को और ये शो नहीं करना था कि रावलपिंडी से चकलाला एयरपोर्ट से जाएंगे तो पिशावर की एयरपोर्ट से जहाज बोइंग तैयार किया कि उधर से जाएंगे। जब वो जहाज में बैठ गए और उसके इंजन टर्न ऑन हुए तो इंडियन एयर अटैक आ गया इसके ऊपर, पिशावर एयरफील्ड के ऊपर। तो जहाज तैयार था, उसी इंजन स्टार्ट थे और लाइट्स ऑफ की हुई थी। उसके जाने से पहले तमाम प्रेजिडेंट्स हाउस के अंदर ऐसे इकदाम किए गए कि पता चले कि प्रेसिडेंट अपने बेडरूम में ही है। गार्ड्स भी, बाकी भी, सुबह का जो बेटी आती है, जितनी चीजें थी एड्स वेड्स सब इसी तरह ड्रिल की गई। किसी को इल्म नहीं था सिवाय उसके मिलिट्री सेक्रेटरी के और फॉरेन मिनिस्ट्री में भुट्टो को। और जब एयर अटैक गुजर गया, कोई खास डैमेज नहीं हुआ, इंडियन एयरक्राफ्ट के बॉम्ब्स एक पासिंग फेज थी अटैक की, इधर उधर फील्ड्स में गिर गए और फिर वो जहाज टेक ऑफ करके चाइना चला गया। सीक्रेट मीटिंग थी उधर, मिल के चोन लाइक और बाकियों को दूसरे दिन वापस आ गए थे।
इस लड़ाई में भारत के 3,000 और पाकिस्तान के 3,800 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि भारत को पाकिस्तान की 1,840 वर्ग किलोमीटर जमीन हाथ लगी। दोनों देशों ने जीत का दावा किया, लेकिन वास्तव में दोनों ही देश अपने सैनिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे। अय्यूब इस युद्ध से इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा,
मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप 1965 पर हमारी विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी सुन रहे थे। आप इस कड़ी को विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं और अगले 22 दिनों तक ये श्रृंखला जारी रहेगी, तो सुनना ना भूलिएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपको 1965 पर विशेष रिपोर्टों का ये जो श्रृंखला है कैसी लग रही है। और अब खेल समाचारों की जानकारी के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, भारत ने 22 साल बाद श्रीलंका से जो है टेस्ट सीरीज जीती है, तो कैसा रहा मैच?
बिल्कुल आपने सही कहा, और दरअसल भारत को इस जीत का इंतज़ार कल से ही था, क्योंकि कल श्रीलंकाई पारी काफ़ी हद तक लड़खड़ा रही थी क्योंकि उसके 3 विकेट 21 रन पर गिर चुके थे। लेकिन आज जब खेल शुरू हुआ तब भारत को जीत के लिए अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ा। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 386 रनों का लक्ष्य था, लेकिन आज उसकी पूरी पारी 268 रन पर समाप्त हुई। लेकिन इसी बीच श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज, जिन्होंने 110 रनों की शतकीय पारी खेली और उनके नए विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल परेरा, जो कि अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने भारत की कड़ी परीक्षा ली। इन दोनों ने ऐसे समय में मोर्चा संभाला जब एक समय श्रीलंका के 5 विकेट 107 रन पर गिर चुके थे। इसके बाद इन्होंने 6 विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की और कुशल परेरा ने 70 रन बनाए। और जैसे ही कुशल परेरा आउट हुए उसके बाद भारतीय गेंदबाज मैच में छा गए। वैसे इस मुकाबले में भारत के ईशांत शर्मा ने दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमेश यादव ने भी 65 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन आर अश्विन का भी जादू चला, उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट लिए। आर अश्विन को इस पूरी सीरीज़ में 17 विकेट लेने के कारण मैन ऑफ द सीरीज़ घोषित किया गया। और पहली पारी में शानदार नाबाद शतक बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले भारत ने 22 साल पहले श्रीलंका से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1-0 से जीती थी। कितनी महत्वपूर्ण है ये जीत भारत और कप्तान विराट कोहली के लिए, ये जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली से बातचीत की।
विराट कोहली एक नई टीम, जिसे आप बोलेंगे कि एक उभरती हुई टीम, उसके कप्तान थे। प्रेशर ये था कि बाहर जीतती नहीं है इंडिया, हालांकि कंडीशंस तो सब कॉन्टिनेंट की, श्रीलंका की भी ऐसी ही कंडीशंस है जैसी घर पे मिलती हैं। और बांग्लादेश में वनडे सीरीज हारे थे तो वो एक प्रेशर अलग था, और श्रीलंका को उनके घर पे हराना बहुत मुश्किल काम है। श्रीलंका घर पे जो है एक बहुत स्ट्रांग टीम है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छी जीत है।
और अगर भारत के कप्तान विराट कोहली की बात की जाए तो उन्होंने भारत की ओर से इस सीरीज में 233 रन बनाए, जिसमें उनका एक शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी 2 अर्धशतक की मदद से 202 रन बनाए। उधर अगर अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए तो कल देर रात खेले गए मुकाबलों में अमरीका की सेरेना विलियम्स और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच जीतने में कामयाब रहे, लेकिन पिछले उपविजेता जापान के केई निशिकोरी पहले दौर में हारकर बाहर हो गए। अगले कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए आदेश आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। थाईलैंड ने 2 सप्ताह पहले बैंकॉक में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले के केस में एक दूसरे विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। कुवैत ने 24 लोगों पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने का केस दर्ज किया है। सरकारी वकील ने कहा कि ये लोग हिजबुल्ला और ईरान के साथ मिलकर कुवैत के विरुद्ध कदम उठा रहे थे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी दमिश्क के बाहर दूसरे विद्रोही समूहों पर हमले कर रहे हैं। इस हमले के बाद आईएस दमिश्क के सबसे पास के इलाके तक پہنچ گیا ہے۔ بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 1,65,000 کروڑ کی پیکج کی گھوشنا کی ہے وہ قریب 1,45,000 کروڑ کے علاوہ ہے جو بہار کو کیندر سرکار کی طرف سے ملنے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
مکھیہ سماچار سنا رہے تھے فیصل محمد علی سی کے ساتھ۔ دن بھر میں آج بس اتنا ہی۔ آپ سے 9:30 بجے گھٹنا چکر میں تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔